भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 13वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा जी के द्वारा बालकों और बछड़ों का हरण। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयशिष्यस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनय शिष्यस्य शृण्वन्नपि कथा मुहुः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयशिष्यस्य शृण्वन् अपि कथामुहुः। आप में से कोई दोहराए।
श्रीशुक उवाच साधु पृष्ठ महाभाग
साधु पृष्ठ महाभाग श्री शुक उवाच। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, साधु पृष्ठम, आपके प्रश्न से मैं सम्मानित हुआ हूँ। महाभाग परम भाग्यशाली, त्वया आपके द्वारा भागवतोत्तमा, हे सर्वश्रेष्ठ भक्त, यत् क्योंकि नूतनयसी, तुम नए से नए कर रहे हो, ईशस्य भगवान के श्रृण्वन् अपि निरंतर सुनते हुए भी कथाम लीलाओं को मुहुः बारंबार। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में प्रौढ़ हुए बिना या परिपक्व हुए बिना भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण कर पाना कठिन है। नित्यम नवनवायमान यद्यपि अग्रगण्य भक्त भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं, किंतु तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसीलिए परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा बाहर स्कूल आवाज बाद में कर ले, थोड़ा एक घंटा शांत रहे। तो ये दसवें स्कंद का 13वां अध्याय है, जिसके सार पर, भागवत सार पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहरा लें, आप सब एक साथ इनको कहिए।
सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाध्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्माम प्रेमनारत्कंठयो स्फुरा।
हरे कृष्णा। तो भागवत का ये दसवें स्कंद का 13वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके हम सबके लिए। पहला महत्व इसका ये है कि ये वो अध्याय है जिसमें हमारे संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य, जिनसे ये संप्रदाय प्रारंभ होता है, भ्रम में पड़ जाते हैं। जिस संप्रदाय के आचार्य ही भ्रम में हों तो वो संप्रदाय कैसे पालन होगा। इसीलिए बड़ा विशेष है समझना इसको। तो संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, जिनसे संप्रदाय शुरू हुआ ब्रह्मा जी, वो मोह में पड़ जाते हैं। दूसरा महत्व इस अध्याय का है हम सब के लिए जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, कि ये अध्याय श्रील प्रभुपाद का आखिरी अध्याय है जिसका उन्होंने तात्पर्य दिया है। ये 13वां अध्याय, ये आखिरी अध्याय था दसवें स्कंद का, इसके आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य दे नहीं पाए। तो ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अध्याय अंतिम भक्ति वेदांत तात्पर्य है। प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय में इसको पूरा किया था और फिर इसके बाद उनके शिष्यों ने आगे के अध्यायों को पूरा किया है। तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य को भी प्रकट करते हैं और वृंदावन की माधुरिता को भी प्रकट करते हैं। इसलिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ही ऐसी लीला है जिसमें बलराम जी भी भ्रमित हो गए। बलराम जी को भी नहीं पता चला कि ये क्या हो गया, वो भी भगवान की शक्ति के अधीन आ गए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है ये। पहले 11 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी, जैसे हमने पहले श्लोक में ही पढ़ा, धन्यवाद देते हैं, गुणगान करते हैं परीक्षित महाराज का, भक्तों का गुणगान करते हैं और फिर आगे कृष्ण के अपने ग्वाल बालों के साथ प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन करते हैं। 12वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक वर्णन किया गया कि कैसे ब्रह्मा जी बालकों को और बछड़ों को चुरा लेते हैं और फिर कृष्ण कैसे सभी बालकों या बछड़ों में अपना विस्तार करते हैं। आगे 22वें श्लोक से कहा गया, जहां विस्तार कर लिया कृष्ण ने अपना, तो 22वें श्लोक से कृष्ण का माताओं के साथ अर्थात जो गोपियां हैं उनके साथ और गायों के साथ कैसा आदान प्रदान हुआ जब कृष्ण बालकों के रूप में और बछड़ों के रूप में थे, तो ये वर्णन 34वें श्लोक तक किया गया। 35वें श्लोक से 39 श्लोक तक बलराम जी का वर्णन है कि बलराम जी सोचते मैं कैसे मोह में आ गया, और फिर 40वें श्लोक से आगे वर्णन है 55 श्लोक तक कि कैसे ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं, और अंतिम विभाग इसका है जहां 56 श्लोक से लेकर 64वें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ऐश्वर्य दिखाया उसके बाद ब्रह्मा जी की क्या प्रतिक्रिया हुई और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने वृंदावन के दर्शन कराए और उसके बाद भी ब्रह्मा जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये इन श्लोकों में कहा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे हमने श्लोक पढ़ा आज का, कि गुणगान करते परीक्षित महाराज का कि आपको ये कृष्ण कथा अब इतना समय हो गया सुनते हुए, कितना समय हो गया था परीक्षित महाराज को कौन बताएंगे, कितना समय हो गया था कृष्ण की कथा सुनते हुए, अंदाजा 5 दिन, और कोई और बोली लगाओ 6 दिन, अच्छा हुआ 7 नहीं। हाँ ये सही है, 5 दिन हुए थे, लेकिन उसको नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहां। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तुम बचपन से सुनते आए हो कृष्ण कथा को, तो उन्होंने बचपन से सुना है, हालांकि यहां 5 दिन हो गए थे क्योंकि 10वां स्कंद शुरू हुआ प्राय 4वें दिन के अंत में, तो स्वाभाविक है 5 दिन हो गए, लेकिन यहां उस बात को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तुमने बहुत लंबे समय तक सुना है। लंबे समय तक मतलब बचपन से सुनते आए हो। परीक्षित महाराज का यही कार्य था, बचपन में वो कृष्ण की गुड़ियाओं से खेलते थे और कृष्ण की कथा सुनते थे, यही उनका बचपन था। तो तुम बचपन से सुनते आए हो लेकिन फिर भी तुम्हें ये कथाएं नई नई लग रही हैं, बारंबार सुन रहे हो तुम उनको, ये एक भक्त का लक्षण है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और फिर जब उन्होंने ये कह दिया भागवत तमा, आप भागवतों में उत्तम हैं, आप भक्त हैं, तो आगे भक्तों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी के भक्त कौन होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कुछ लक्षण देते हैं भक्तों के, तो श्रील प्रभुपाद अनुवाद और तात्पर्य में भक्तों के कुछ लक्षण देते हैं जिसको हमें सुन लेना चाहिए कि भक्तों के क्या लक्षण है। तो पहला लक्षण दिया गया है भक्तों का कि उन्होंने कृष्ण को ही केवल अपने जीवन का सार बनाया हुआ है। कृष्ण उनका जीवन है। तो भक्त किसे कहा जाता है? देखिए हम लोग जब ये सब बातें सुनते हैं तो हमें सोचना चाहिए हम कितनी दूर हैं अभी भक्त बनने से। हम तो जब से संस्था में आते हमें भक्त कहना प्रारंभ कर दिया जाता है, दीक्षा नहीं होती है तो भी भक्त हिमांशु, भक्त ये इत्यादि, तो हमें तो भक्त कहना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इन चीजों से हमें देखना चाहिए हम कितनी दूर हैं भक्त बनने से, भक्त कहलाने से। तो पहला चीज है कृष्ण को अपना जीवन स्वीकार कर लिया है उन्होंने, और कृष्ण ही उनकी सारी बातों के, जो भी वो बातचीत करते हैं उनकी बातों के विषय कृष्ण है। दूसरा लक्षण बताया गया। तीसरा लक्षण बताया गया कि वे लोग कभी भी कृष्ण कथा को सुनने में चूकते नहीं है, या कृष्ण कथा को छोड़ नहीं सकते। जहां भी कृष्ण कथा हो रही है, जिस प्रमाणिक भक्त के द्वारा जहां कृष्ण कथा हो रही हो, वो तुरंत चले जाते हैं, चाहे कितनी ही बार कथा क्यों ना सुनी हो। तो ये भक्त के लक्षण है, आगे बढ़े हुए भक्त के, परिपक्व भक्त के, कि वो कभी नहीं छोड़ते कृष्ण कथा को। और आगे वर्णन किया गया, प्रभुपाद कहते हैं कि वो कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में देखते हैं, अपने हृदय में अनुभव करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि हम अकेले हैं, वो कभी नहीं सोचते कि हम कृष्ण से अलग हैं, वो कभी नहीं सोचते कि ये जगत में मेरे लिए कोई नहीं है मेरी रक्षा करने वाला। वो हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। और महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद समझाते हैं कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका उपयोग भी भक्ति में करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है जिसमें वो बताते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लभे बीने मद कृष्ण गुण गाने निजुक्त करीबे जथा तथा। बहुत सुंदर वो कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम को कैसे मैं उपयोग करूंगा। वो कहते हैं काम को मैं कृष्ण को, जितने भी कार्य कर रहा हूं उनके सारे फलों को कृष्ण को अर्पण कर दूंगा। तो हृदय में काम रहेगा ही नहीं, इच्छाएं रहेंगी ही नहीं। ये तो इच्छाएं हैं हमारी, जो काम अर्थात इच्छाएं जो हमें इस जगत में बांधे रखती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि काम कृष्ण कर्मार्पणे, तो ये जो काम होता है मैं कृष्ण को अर्पण कर दूंगा। और क्रोध किसको करेंगे? भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनके प्रति मैं क्रोध को लगाऊंगा, भक्तों के प्रति नहीं लगाऊंगा, भगवान के प्रति नहीं लगाऊंगा। जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनके प्रति मैं क्रोध करूंगा। प्रभुपाद भी इस बात को उपदेश अमृत में लिखते हैं कि जय श्री श्री गौ नटराज दयाल निताय की, कि वो कहते हैं कि अपने क्रोध को हमें उन लोगों के प्रति लगाना चाहिए जो भगवान और भक्तों के विरोधी हैं। उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, उदाहरण देते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु का, अर्जुन का, कि इन्होंने क्रोध का इस्तेमाल किया उन लोगों के प्रति जो भक्त के द्वेषी जन हैं। तो यहां वही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि क्रोध भक्त द्वेषी जने, और फिर लोभ, इसका लोभ का उपयोग कैसे करूंगा मैं। बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, हृदय में लोभ है ना तो किस चीज का लोभ होना चाहिए? लोभ साधु संगे हरि कथा, तो लोभ होना चाहिए साधुओं के संग में हरि कथा करने का, भगवान की कथा को सुनने का, जिसका वर्णन यहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए कर रहे हैं कि आपको बड़ा लोभ है, बारंबार आप सुनना चाहते हैं, आपको हमेशा नई लग रही है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भागवत की कथाओं को सुनते थे बारंबार, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, ऐसा वर्णन 100 बार सुनते थे। और सुनाओ और सुनाओ। और हमें कथाएं बारंबार सुननी चाहिए, नहीं तो हृदय में काम क्रोध बढ़ जाएगा। और अगर काम क्रोध बढ़ जाता है तो क्या होता है, बताया गया है, क्रोध वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। क्रोध क्या है, वैवस्वतो राजा यमराज है, और क्रोध वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। तृष्णा मतलब इच्छाएं, इस जगत की, इस भौतिक जगत की भौतिक इच्छाएं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती। तो तृष्णा वैतरणी नदी, वैतरणी नदी मतलब नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है, वैतरणी नरक। तो कृष्णा वैतरणी नदी, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दूत धेनु। तो इसलिए विद्या चाहिए, तो विद्या क्या है, कामदूत धेनु, वो एक गाय की तरह है। कौन सी गाय की तरह, कामधेनु गाय, जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। और संतोष नंदनम वनम, अगर हमें संतुष्टि है तो मान लीजिए कि हम इंद्र के नंदन कानन वन का आराम से अनुभव कर सकते हैं, अर्थात प्रसन्नता आ सकती है। तो इसीलिए भक्त बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो इन चीजों को भी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और आगे प्रभुपाद कहते हैं, भय, भय को कैसे लगाते हैं, क्या भक्तों को भय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भक्त को तो कोई भय नहीं होता है, तो फिर भय को क्या उपयोग करते हैं? वो भय का उपयोग करते हैं ये ध्यान रखने के लिए कि कहीं हम पथभ्रष्ट ना हो जाएं, इससे वो भयभीत रहते हैं। तो भक्तों का भय ये नहीं है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, भक्तों का भय ये नहीं है मेरा धन चला जाएगा, भक्तों का भय ये नहीं है मेरा सौंदर्य, मेरा शरीर चला जाएगा। भक्तों का भय है कि कहीं मेरी चेतना कृष्ण भक्ति से दूर ना चली जाए, पथ भ्रष्ट ना हो जाऊं। तो भय को भक्त इसमें लगाते हैं, और वो जानते हैं कि जो अन्य लोगों के लिए बड़ा मधुर है, बड़ा अमृत के समान है, वो हमारे लिए विष है। ऐसी चीजें जो भोग में लोग लगे हैं, जिनको बड़ा भोग में आनंद आता है, हमारे लिए विष है, इसे भक्त कहते हैं। और इसीलिए भक्तों के संग का गुणगान कई स्थानों पर किया गया है। भक्तों के संग के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। बहुत सुंदर बात कही गई है, चंदनम शीतलम लोके, इस जगत में चंदन को बड़ा शीतल माना जाता है। जब गर्मी होती है तो चंदन लगाया जाता है, हम लोग भी भगवान को चंदन लगाते हैं, चंदन यात्रा होती है गर्मी के समय तो भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो चंदनम शीतलम लोके, इस जगत में चंदन को शीतल माना गया है, लेकिन चंदनादपि चंद्रमा, चंदन से भी ज्यादा चंद्रमा शीतल होता है, क्योंकि उसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत शीतल कर देती हैं। चंदनादपि चंद्रमा, लेकिन चंद्र चंदनयोर मध्ये, इन दोनों से भी ऊंचे, मध्योर, इन दोनों से भी ऊंचे शीतला साधु संगति, भक्तों की जो संगति है वो उससे भी शीतल, क्योंकि वो हमारे मन को शीतल कर देती है। तो इस तरह से, या आत्मा को शीतल कर देती है। तो इस तरह से भक्त हैं, भक्तों का गुणगान किया गया। भक्त वो है जो अपने आसपास की वस्तु को कृष्ण से संबंधित कर सकता है। भक्त वो है जो सीखता है, हर वस्तु से सीखता है, हर व्यक्ति से सीखता है, हर प्राणी से सीखता है। भागवत में वर्णन आता है अवधूत ब्राह्मण का, जिसने 24 गुरु बनाए, हर एक चीज से सीखा। हमें भी सीखना चाहिए, भक्त क्या सीख सकता है? अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें सेवा का क्या भाव होना चाहिए हमारा, तो हम सीख सकते हैं शेर से। शेर जब अपने कार्य के लिए जाता है तो अपना पूरा 100% उसमें देता है। जब उसको मारना होता है हिरण को या किसको, बहुत ध्यान से जाता है और पूरी शक्ति लगा कर देता, कोई कमी नहीं रखता। और जब तक कार्य पूरा ना हो जाए छोड़ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जरा से छोड़ देता है फिर बाद में देखेंगे बहुत थक गए हैं। जब तक कार्य पूरा ना हो नहीं छोड़ता। तो शेर से भक्त को सीखना चाहिए कि जब हम सेवा करें तो 100% दें अपना सेवा में, और जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक चैन की सांस नहीं लें। और भक्त के लिए कार्य पूरा होने का अर्थ क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। जब तक वो ना हो चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए भक्त को। ये हम शेर से सीख सकते हैं, बगुले से सीख सकते हैं। हम लोग सुना करते थे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, श्वान निद्रा बगुल ध्यानम, कि एक एक कुत्ते की तरह, कुत्ता जो होता है उसका श्वान उसको कहते हैं, उसकी तरह निद्रा होनी चाहिए। तो ये भक्तों के लिए भी है, वैसे विद्यार्थियों के लिए कहा जाता था लेकिन भक्तों के लिए है। क्यों? क्योंकि कुत्ता हमेशा सावधान रहता है, सतर्क रहता है, सोता भी रहता है, जरा सी आवाज होती है उठ जाता है, सतर्क एकदम। तो एक भक्त को इस जगत में हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं मैं सो जाऊं और माया मुझे लेकर चली जाए। तो इसीलिए सतर्क रहना चाहिए, कभी ऐसे सो नहीं जाना चाहिए। और यही कारण है चैतन्य महाप्रभु आए, और महाप्रभु ने आकर हम सबसे प्रार्थना की, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले कुतो निद्रा जाओ, माया पिशाची रकोले, कि माया की गोद में सो नहीं जाओ, भक्त हो जागो जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। तो महाप्रभु आए हमें उठाने के लिए। तो इसीलिए श्वान निद्रा, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बगुल ध्यानम, एक बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। बगुला क्या करता है? खड़ा रहता है नदी के किनारे, देखता रहता है, ऐसा लगता है कि बड़े ध्यान में है, योगी की तरह। जैसे हम लोग कल वर्णन कर रहे थे, बकासुर परसों कर रहे थे, और जैसे ही वो मछली को देखता है तुरंत झपट लेता है। तो ऐसे ही भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए कि जैसे बस किसी न किसी तरह मैं पड़ ना जाऊं माया में, और जैसे ही अवसर मिले कृष्ण भक्ति का, जैसे बगुले के लिए भोजन होता है मछली, जैसे ही मिलता है वो झपट लेता है, ऐसे ही हमें भक्त के लिए भोजन क्या है? आत्मा का भोजन, कृष्ण कथा। तो बड़े ध्यान रखना चाहिए सतर्क, कि कहीं मैं माया में ना गिर जाऊं, और लेकिन जैसे ही अवसर मिले कृष्ण कथा का झपट लेना चाहिए, लौल्यम होना चाहिए। लौल्यम मतलब लोभ। हम बहुत लोभ करें इसका कथा का, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर कहते, लोभ साधु संगे हरि कथा। और भी हम एक प्राणी से सीख सकते हैं जिससे शायद कोई नहीं सीखना चाहता, और वो है गधा। गधे से, गधे को गधा बहुत मूर्ख कहा जाता है ना। तो एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि ये गधे को इतना क्यों निंदा की जाती है, बाकी भी अन्य प्राणी हैं, बेचारा गधा क्या सोचता होगा कि मनुष्य मेरे जहां देखो वहां मेरा निंदा करते रहते हैं, ऐसा क्या पाप किया है मैंने। तो किसी ने पूछा था, तो हमने कहा कि उसकी निंदा इसलिए की जाती है, उसको मूर्ख इसलिए माना जाता है क्योंकि वो गधा है। क्या कर सकते, गधा। खैर उसके अन्य कारण भी हैं, लेकिन गधे को साधारणतः मूर्खता से माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर गधा मेहनत भी बहुत करता है। आप देखिए, हर अवस्था में कोई भी वातावरण हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हम देखते हैं कि गधे पर लाद कर ले जाया जाता है, गधा चलता रहता है। तो उससे भी सीख सकते हैं कि हर अवस्था में हमें अपनी सेवा करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए सेवा। लॉकडाउन हो गया, बस मंदिर बंद करो, बैठ जाओ, क्यों, क्या करें, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ जाओ, बस कोई चिंता नहीं, न कथा न सेवा। क्यों भाई, क्या करें, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, बाहर नहीं जाने दे रही। भक्तों को ऐसी अवस्था में तो और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, जब बाधाएं आए तो कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ये भक्तों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं और फिर वो कहते हैं कि भगवान की लीलाएं ये बहुत गुह्य हैं, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उन गुह्य लीलाओं को एक आध्यात्मिक गुरु अपने उस शिष्य को सुनाते हैं जो बहुत समर्पित है और बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करता है। तो समर्पित भाव का यहां वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, विशेषता कि कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु अपने उस भक्त को, उस शिष्य को सुनाता है रहस्यमय बातें, गुह्य बातें, जो समर्पित है। इसीलिए हमें भागवत समर्पित भाव से सुननी चाहिए, ये यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो फिर वो आगे कृष्ण को कहने लगे लीलाओं को, ये जो लीला चल रही थी अघासुर की, कि अघासुर को भगवान ने मार दिया, पिकनिक मनाने गए थे, हमने सुना था कल। तो अब आगे वो स्थान ढूंढने लगे और आप यहां देखेंगे इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी केवल कृष्ण का नाम ले रहे हैं, बलराम जी का नाम नहीं है। पहले भी अघासुर के समय उन्होंने कृष्ण का नाम लिया कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ गए, यहां भी कृष्ण, कहीं बलराम जी का नाम नहीं आ रहा है। कारण यह है कि ये लीला बलराम जयंती के दिन हुई, बलराम जी के आविर्भाव के दिन हुई, और उस दिन जब जाने लगे तो बलराम जी को रोक लिया रोहिणी माता ने कि तुम आज नहीं जाओ, तुम्हें यज्ञ इत्यादि में भाग लेना है, ब्राह्मणों को दान देना है, आज तुम्हारा आविर्भाव या जन्म दिवस है, तो तुम यहीं रहो। तो बलराम जी नहीं थे इस लीला में, तो ना अघासुर की लीला में वो थे, क्योंकि वो भी आज ही के इसी दिन हुई, और ना आज के दिन जहां ब्रह्मा जी विमोहित होने वाले हैं। तो कृष्ण ने अपने मित्रों को दिखाया कि देखो कितना सुंदर स्थान है, नदी का तट है, हमें यहीं पर रहकर बैठकर अपना भोजन लेना चाहिए। तो सब लोग वहीं बैठ गए और बहुत सुंदर स्थान था, कमल खिले हुए थे, भंवरे मंडरा रहे थे, बहुत से पक्षी थे, वृक्ष थे, इसका वर्णन श्री कृष्ण करते हैं। और फिर सब बैठ गए कृष्ण मध्य में, ऐसा वर्णन है कि जैसे एक कमल का पुष्प होता है, उसका एक मध्य केंद्र होता है, उसके चारों ओर पंखुड़ियां, तो ऐसे ही कृष्ण बीच में बैठे और चारों ओर सारे बच्चे बैठे। और हम कल वर्णन कर रहे थे कितने थे, असंख्य बालक थे, हजारों हजारों बालक, और सबको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं। और सब फिर हंसी मजाक होने लगा, सब अपना कोई किसी का खा रहा है निकाल कर, कोई किसी ने भोजन निकाला, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और इस तरह से ये करते रहे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण भी बैठे हैं, वो भी खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं, वो भगवान जो यज्ञ में खाते हैं, जो मंत्रों से लेते हैं, मुद्राओं से जिनको अर्पण किया जाता है। अभी ना कोई मुद्रा है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई मंत्रों का उच्चारण है, भगवान सीधे हाथ में दही और राइस, दही और चावल लेकर, एक हाथ में इनके दही चावल है, थोड़े से यहाँ कहीं फल लगे हुए हैं, उसको खा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये प्रेम है उनका भक्तों के प्रति। तो ब्रह्मा जी, हम लोग वर्णन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सुना था कि अघासुर मुक्त हो गया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अघासुर कैसे मुक्त हो गया। और हमने कल पढ़ा भी था कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान का धाम प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और आए देखने के लिए कि अरे ये क्या है, कैसे हो गया। और जब आए तो क्या दृश्य देख रहे हैं ब्रह्मा जी, कि वो भगवान जिनको अर्पण करते हुए मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, जिनको वर्णन अर्पण करते हुए शुद्धता होनी चाहिए, वो एक दूसरे की प्लेट, एक दूसरे की पोटली से निकाल कर खा रहे हैं। और बच्चों ने प्लेट किसको बनाया हुआ था, बड़ा सुंदर वर्णन है, ऐसा नहीं था कि वो सब प्लेट लेके जाते थे, जब हम लोग कहीं जाते हैं यात्रा पे कैंप में, तो सारी व्यवस्था ना, प्लेट लेके जाते हैं, ये सर्विंग, वो बस पोटली में बांध कर ले गए थे। तो अब उनको रखना था, तो किसी ने कोई पत्ता ले लिया, किसी ने कोई फूल ले लिया, अलग अलग तरह के उन्होंने प्लेट्स बनाई। तो कृष्ण सब में खा रहे हैं, तो ये देखा ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने देखा कि हाथ में ये दही और चावल लिए हुए छोटे से बच्चे वो खा रहे हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, यही है ना, सुना तो था, पता तो था, लेकिन यही है कि नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षा लेते हैं। तो जो उस समय बैठ गए थे खाने, बछड़े जो थे बहुत दूर चले गए, तो सब बच्चे सोच रहे, अरे अरे मेरे बछड़े कहाँ। तो कृष्ण का, सब बैठो बैठो, यहीं बैठो, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाता हूँ, सब बछड़ों को ले आऊंगा, बस चिंता नहीं। और ऐसे ही हाथ में दही का चावल, दही चावल लेकर ही जा रहे हैं भगवान, वो खा कर नहीं गए, रख कर नहीं गए, उन्होंने देखा रहे सब चिंतित हैं, अच्छा अच्छा रुको मैं आता हूँ, और ऐसे ही हाथ लेकर जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये भगवान है, वो हाथ में दही चावल लेकर ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है, दिख नहीं रहे, अरे आवाज लगा रहे बछड़ों को, बछड़े दिख नहीं रहे, कौन मानेगा ये भगवान है, ब्रह्मा जी तक नहीं माने। ये भगवान का प्रेम है, ये भगवान की मधुर लीलाएं हैं, ये भगवान का आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ, कि भगवान सब भूल जाते हैं, वो भूल गए मैं भगवान हूं, भूल गए कि मेरी सर्वशक्तिमान वैकुंठ में कैसे कैसे मेरी पूजा होती है, भगवान बस वो दही चावल में आनंद ले रहे, उसको संभाल रहे थे कहीं गिर ना जाए हाथ से। तो ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को ले गए, भगवान गए, कृष्ण गए, दिखे नहीं बछड़े, अरे कहाँ गए। तो जब बहुत दूर हो गई, नहीं मिले, तो वापस आए, तो जब वापस आए तो देखा यहां से बालक भी गायब है, एक भी बालक नहीं, अरे ऐसे तो नहीं होता, मुझे छोड़कर तो नहीं जाते, ये क्या हो गया। तो कृष्ण स्मरण करने लगे और तुरंत समझ गए कि ये सारा बदमाशी ब्रह्मा की है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो ब्रह्मा जी को सबक सिखाना पड़ेगा, सब कभी कभी ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को सबक सिखाना पड़ेगा। तो उस समय कृष्ण ने, यहाँ पर वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ऐसे ले गए, तो कृष्ण ने, जो कृष्ण सारे बालकों को बता रहे थे कि तुम भयभीत मत हो, बिल्कुल भयभीत मत हो, मैं ले, पहले भगवान जब जा रहे थे बिल्कुल भयभीत नहीं होना, मैं ले आऊंगा, बैठो। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं उनको भय नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत सुंदर श्लोक वो कहते हैं, वो आगे आएगा प्रार्थनाओं में, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, यही ब्रह्मा जी की ही प्रार्थनाएं हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी बच्चों को ले गए, और प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि ये बच्चे कौन हैं, श्री कृष्ण के नित्य संगी हैं, ये साधारण बच्चे नहीं है। तो श्री कृष्ण के नित्य संगियों को जो आध्यात्मिक स्तर पर हैं, एक जीव इस जगत का कैसे ले जा सकता है ब्रह्मा, क्या शक्ति हो गई ब्रह्मा की कि उन बच्चों को ले गए, वो जो नित्य संगी हैं, नित्य मुक्त जीव हैं, ब्रह्मा नित्य मुक्त नहीं है, वो तो खुद बंधे हुए हैं, तो उनकी कैसे शक्ति हो गई। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे रावण सीता को नहीं ले गया था, मायावी सीता को ले गया था, रावण सीता को हाथ नहीं लगा पाया था क्योंकि सीता भगवान की संपत्ति है, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी बच्चों को नहीं ले जा पाए, बालकों को, वो मायावी बालकों को ले गए थे उठा के, कृष्ण ने बालकों को कहीं और स्थानांतरित कर दिया था, और ब्रह्मा जी को लगा कि मैं बालकों को ले जा रहा हूं, लेकिन बालकों को नहीं, वो मायावी बालकों को ले गए थे। तो ब्रह्मा जी उठाकर ले गए, अब कृष्ण ढूंढ रहे हैं, अरे बालक नहीं है, इन्हीं समझ गए ब्रह्मा जी को सबक सिखाना है। तो कृष्ण जितने भी बछड़े थे और जितने भी बालक थे उनमें बदल गए, वही रूप लिया बालकों का, वही कपड़े पहने, वही श्रृंगार किया, जैसे थे बच्चे वैसे ही पूरे, अब वो कृष्ण हो गए सब तरफ, और ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी जब गए, उन्होंने बालकों को रखा और फिर थोड़ा एक क्षण के लिए रुके और फिर आए। इतने समय में पृथ्वी पर एक वर्ष बीत गया था ब्रह्मा जी के जाने और आने में, और उस एक वर्ष तक श्री कृष्ण हर एक गोपी के बच्चे बने हुए थे, बालक बने हुए थे, हर एक गाय के बछड़े बने हुए थे, और ऐसे में क्या अवस्था हुई उसका वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण आए ब्रज में शाम को, तो अब सोच लीजिए सभी कृष्ण हैं, लेकिन माताओं को तो नहीं पता, वो तो अपना बच्चा मान रही हैं। तो माताओं ने बच्चों को बड़ा प्रेम करना शुरू किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व में माताएं अपने बच्चे से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी। देखिए इस जगत में क्या होता है, इस जगत में हम दूसरों के बच्चों से ज्यादा अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, ये स्वाभाविक है। कोई भी माँ होगी वो दूसरे के बच्चे से ज्यादा अपने बच्चे को प्रेम करेगी, ये बहुत स्वाभाविक है। भले दूसरे के बच्चे को बहुत अच्छे से रखेगी सब, लेकिन जहां प्रेम की बात आएगी मेरा बच्चा सबसे पहले। ब्रज में उल्टा था, ब्रज में अपने बच्चे से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते थे वो, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं था, अब वो अपने ही बच्चे को बहुत प्रेम कर रहे हैं, वही प्रेम जो कृष्ण को देते थे, क्योंकि कृष्ण ही है, तो अपने बच्चों को बड़ा प्रेम करने लगे। गायों ने जब अपने बछड़ों को देखा तो वो बारंबार चाट रही हैं, पूरा शरीर चाट रही हैं, दूध पिला रही हैं, और उन बछड़ों को भी वर्णन किया गया जो बड़े हो चुके थे, जो उस समय दूध नहीं पीते थे उनको भी दूध पिला रही हैं गायें, वो भी दूध पी रहे हैं। ऐसा होता है कि जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर गायें उसको दूध नहीं पिलाती, दूध वो फिर खाते खाना शुरू कर देते, तो उन बछड़ों को भी, क्योंकि वो सारे कृष्ण हैं। तो गायों का प्रेम इतना बढ़ गया, माताओं का प्रेम इतना बढ़ गया, सारी जगह पर ऐसे ही हो गया। और फिर जब 5 या 6 दिन रह गए थे, ऐसे पूरे समय 1 वर्ष कृष्ण रहे, माताओं को आनंद देते रहे, गायों को आनंद देते रहे। वैसे एक स्थान पर यह भी वर्णन है कि ये वो समय था जब सारी गोपियों का विवाह हुआ इस 1 साल में। नंद महाराज से कहा गया कि बहुत अच्छा समय है, विवाह कर दो इनका, बस तब हो जाता था छोटे में, तो उस समय विवाह भी हो गया था, सबका विवाह कृष्ण से हुआ। तो सारे जो ग्वाल बाल थे इत्यादि वो तो वहां पर थे, तो सब इस समय कृष्ण हैं। तो 1 वर्ष तक हुआ, 5-6 दिन रह गए थे वर्ष पूरा होने में, बलराम जी ने देखा। सोचिए 1 वर्ष तक बलराम जी को भी नहीं पता था क्या हो रहा है, वो भी सोच रहे थे सब चल रहा है। बलराम जी ने देखा कि मैं कुछ अलग देख रहा हूं ब्रज में, लोग अपने बच्चों को इतना प्रेम कर रहे हैं, गायें अपने बछड़ों को इतना प्रेम से दूध पिला रही हैं, भाग रही हैं उनकी तरफ। फिर उन्होंने देखा उस दिन कि गायें ऊपर थी, चर रही थी, और बछड़े नीचे खड़े थे। तो गायों ने जैसे ही बछड़ों को देखा भागते हुए आई पर्वत से नीचे, कोई ध्यान नहीं गिरेंगी क्या होगा, बड़ी तेजी से भाग कर आ रही हैं अपने बच्चों की ओर। और वहां जो गोप बैठे थे, क्योंकि उस समय तक कृष्ण तो नहीं चला, तो गोप जो बैठे थे उन्होंने देखा तो वो भी भाग कर आए। अरे अरे गाय कहाँ जा रही है, बड़े गुस्से में आ गए कि ये क्या गाय कहाँ भाग रही है। लेकिन जब वो आए और उन्होंने अपने बालकों को देखा तो उनको भी बड़ा प्रेम आ गया, वो गायों को छोड़कर अपने बालकों को आलिंगन करने लगे। तो बलराम जी देखिए ये क्या हो रहा है, गाय इतनी तेजी से भाग कर आ रही है, वो गोप आए वो भी अपने बालकों को प्रेम कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो वो सोचने लगे क्या ये सब देवता है या कोई भक्त ने, नारद आदि ने अपना विस्तार कर लिया है, ये कौन है इतना प्रेम हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई शक्ति है। फिर बलराम जी ने सोचा कि कोई भी शक्ति हो मुझे भ्रमित नहीं कर सकती, और मैं भ्रमित हो गया हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या हो रहा है, इसका अर्थ केवल एक ही है कि ये मेरे स्वामी श्री कृष्ण की शक्ति है, और कुछ और कोई शक्ति मुझे मोहित नहीं कर सकती। भगवान की शक्ति अन्य को मोहित कर सकती है, मोहितम ना भी जानाती, मोहित कर सकती है भगवान की शक्ति हर एक को, लेकिन बलराम जी को कैसे कुछ मोहित हो सकता है, वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन बलराम जी भी मोहित हो गए। तो प्रश्न यहां पर यह आता कि ब्रह्मा जी कैसे मोहित हुए, बलराम जी कैसे मोहित हुए, भगवान की शक्ति है, और अगर बलराम जी मोहित हो सकते हैं तो ब्रह्मा जी के मोहित होने में क्या गलती है। भगवान ने जब बलराम जी को मोहित कर दिया, उनको नहीं पता था, तो ब्रह्मा जी को क्या मोहित कर नहीं सकते। और एक स्थान पर एक आचार्य समझाते हैं कि ब्रह्मा जी के 2 रूप हैं, एक ही ब्रह्मा है लेकिन 2 अलग अलग रूपों में, एक है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और दूसरे हैं आचार्य ब्रह्मा। तो सृष्टि कर्ता ब्रह्मा मोह में आते हैं, आचार्य ब्रह्मा कभी मोह में नहीं आते, इसलिए हम अपने संप्रदाय में सुरक्षित हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे संप्रदाय आचार्य मोह में आ गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये सब हो रहा, तो बलराम जी ने देखा, तो बलराम जी ने फिर समझ गए, भगवान से जाकर पूछा, भाई क्या चल रहा है ये सब? कृष्ण से पूछा, इधर आओ। कृष्ण आए, ये सब क्या चल रहा है? कुछ तो हो रहा है यहाँ पर ब्रज में, बताओ क्या क्या है। तो फिर कृष्ण ने बता दिया कि देखो, कहना नहीं लेकिन ऐसा ऐसा हो गया था, तो क्या करें, मुझे करना पड़ा। अच्छा, इसीलिए मैं देख रहा था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर जब एक वर्ष बीत गया, फिर उसी दिन जिस दिन ब्रह्मा जी आए, बलराम जी फिर नहीं थे क्योंकि उस दिन भी उनका जन्म दिवस था। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आए देखने की, देखे अब क्या किया कृष्ण ने, तो देखा कि बच्चे वैसे ही बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं और कृष्ण भी हैं उनमें। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। उधर देखा कि हाँ, बच्चे तो वहीं हैं, तो ये कौन है, ये सब कैसे हो गए। ब्रह्मा जी बड़े मोहित हो गए। और फिर उस समय ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। वो उस समय कहा जाता है कि ब्रह्मा जी परास्त हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरती है तो हल्का सा अंधकार हो जाता है, लेकिन अगर बहुत गहरी रात हो तो बर्फ गिरने के अंधकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर वो कहते हैं कि एक जुगनू होता है रात में, बड़ा चमकता है, लेकिन वही जुगनू दिन के समय दिखाई तक नहीं देता। तुलना कर रहे थे ब्रह्मा जी की और भगवान की, ब्रह्मा जी जुगनू की तरह है, अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान की शक्ति, योग शक्ति के आगे सब कुछ समाप्त हो गया। तो उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे बालक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, भगवान सभी। ब्रह्मा जी बड़े भ्रमित हो गए, ये क्या हुआ, और वो कैसे थे, चतुर्भुज रूप, सारा उनका श्रृंगार किया हुआ है उनके, और केवल चतुर्भुज रूप नहीं था, कौस्तुभ मणि भी थी और श्रीवत्स का चिन्ह भी था हर एक बालक पर, हर एक रूप पर। प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, ये केवल भगवान के लिए हो सकता है। जिसको सारूप्य मुक्ति भी मिलती है, भगवान जैसा रूप चतुर्भुज मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता क्योंकि ये केवल भगवान के लिए है। तो भगवान एक कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और उनके वक्ष स्थल पर सीधे तरफ राइट साइड में एक स्वर्ण रंग के छोटे से बाल का गुच्छा है कहा जाता है। तो वो ऐसा वैष्णव तोषणी में समझाया गया है, उसे श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं। तो भगवान के वो भी देखा ब्रह्मा जी ने, मतलब ये सभी भगवान हैं। बड़े हैरान हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वो भगवान की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, और सारे भक्त और भगवान केवल, ब्रह्मा जी के देखते हैं कि भगवान अपनी केवल दृष्टि से भक्तों की इच्छा को बनाते भी हैं और उनको पूरा भी करते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है, भक्त क्या इच्छा करेगा, करना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, भगवान उसे इच्छा देते हैं, आध्यात्मिक इच्छा, और फिर पूरी भी करते हैं। और इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद लिखते हैं, वो लिखते हैं कि वृंदावन में खाली स्थान था, एक भक्त ने इच्छा की, नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन कहते एक भक्त ने इच्छा की और वहां पर मंदिर प्रकट हो गया, आज वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो हम सब जानते किसके बारे में लिख रहे हैं प्रभुपाद, नम्रता से अपना नाम नहीं लिखा। हम में से कोई होते तो बड़ा बड़ा अपना नाम लिखकर कहते कि मैंने किया है। प्रभुपाद नम्रता से, अरे एक भक्त ने इच्छा की, कोई स्थान खाली था, भगवान ने पूरा कर दिया, आज इतना सुंदर मंदिर है वहां पर, कृष्ण बलराम मंदिर। श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर नटराज दयालिताय की। तो प्रभुपाद कहते हैं वहां मंदिर प्रकट हो गया, और ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने केवल यही नहीं देखा, बहुत कुछ देखा। ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, कर्म, ये सब भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। प्रभुपाद समझाते हैं काल के बड़े सहयोगी हैं इस जगत में, कर्म, स्वभाव, संस्कार इत्यादि, तो वो सब भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो ऐसे जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बड़े भ्रमित हो गए और फिर कृष्ण ने अपनी योग माया की शक्ति को हटा दिया ब्रह्मा जी के पास से। और ब्रह्मा जी ने देखा कि एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा है अपने आप को देख रहे, और फिर उन्होंने देखा कि उसमें एक वृंदावन है, और उसमें उन्होंने देखा कि उसमें परम सत्य को देखा, और वो परम सत्य एक छोटे से बालक के रूप में हो गए, और वो छोटे से बालक हाथ में दही और चावल लेकर बछड़ों को ढूंढ रहा है। वो सब चतुर्भुज रूप गायब हो गए, वही चित्र आ गया उनके सामने कि कृष्ण बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है बछड़े, कहाँ है बछड़े। तो ये देखकर ब्रह्मा जी बड़े ग्लानि उनको हृदय में हुई, और उन्होंने तुरंत अपने हंस वाहन से वो नीचे उतर आए, और नीचे आकर उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपने चारों सर भगवान के चरणों में रख दिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि साधारणतः जो देवता होते हैं पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते हैं, देवता जब पृथ्वी पर आते भी हैं तो पृथ्वी से 6 इंच ऊपर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते। लेकिन इस समय ब्रह्मा जी इतने ग्लानि हो गई कि वो पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने चारों सर, अब प्रश्न आता है कि चार सर तो ऐसे हैं उनके, एक ही सर एक टाइम में जाएगा भगवान के चरणों में, लेकिन वर्णन ने चारों सर रख दिए। तो प्रभुपाद समझाते कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि चारों सर एक समय भगवान के चरणों में आ सके, उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिए, और बारंबार बारंबार उठ रहे हैं गिर रहे हैं, उठ रहे हैं गिर रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी उठे, चेतना उनकी वापस आई, सर नीचे झुका हुआ है, और उस समय उन्होंने भगवान के प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू किया। तो अगले अध्याय में ब्रह्मा जी की इन प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? वो दूसरी लीला है। जब ब्रह्मा जी द्वारका गए थे तो वहां पर वही लीला की बात कर रहे हैं। हाँ, किस लीला में? हाँ, वो एक अलग लीला है कि ब्रह्मा जी एक बार भगवान से मिलने द्वारका गए, उन्होंने द्वारपाल को कहा कि जाओ भगवान से, कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा जी आए हैं मिलने। तो द्वारपाल गए, वापस आए, पूछा, वो पूछ रहे कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, कौन से ब्रह्मा, मतलब उनको तो लगता था मैं ही अकेला बादशाह हूँ, ये कहाँ से इतना हो गया। तो उन्होंने कहा जाओ, अब क्या बताएं, कुछ विशेषता अपनी बतानी। तो ब्रह्मा जी की एक ही विशेषता है कि चार मुख हैं। तो उन्होंने कहा जाओ कहो चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान को जाके कहा, तो उन्होंने बुलाया अंदर, तो मिले भगवान को, प्रणाम किया वगैरह सब बताया। बोले प्रभु एक शंका है मन में। क्या शंका है? आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड में तो एक ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा आए तो आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल एक ही होता है, अब एक प्रिंसिपल है तो वो जाए मिलने किसी को, क्लास में कहा जाए जाके आपको कोई आके कहे प्रिंसिपल आ रहे हैं, अब लोग कौन सा प्रिंसिपल आ रहे हैं, वे कौन सा, मतलब एक ही प्रिंसिपल होते हैं। तो ब्रह्मा जी तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही ब्रह्मा हो। तो फिर उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि अलग अलग ब्रह्मांडों से, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं और कई ऐसे ब्रह्मांड हैं असंख्य, तो अलग अलग ब्रह्मांडों से ब्रह्मा आने लगे। किसी के 8 मुख हैं, किसी के 16 मुख हैं, किसी के 1000 मुख हैं, इतने बड़े बड़े, और वो सब आकर कृष्ण को अपनी रिपोर्टिंग देने लगे कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी कृपा से हमारे ब्रह्मांड में ये है, सब रिपोर्ट कर रहे हैं। अब भगवान सबकी सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। तो ये ब्रह्मा खड़े देख रहे हैं, एक आ रहे हैं कि वो ब्रह्मा उन्हें नहीं देख रहे थे। तो ऐसे ब्रह्मा जी जब भ्रमित हो गए तो वो लीला अलग से लीला है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का?
आपने बताया कि शिष्य ब्रह्मा और आचार्य ब्रह्मा अलग होते हैं, आचार्य ब्रह्मा कहाँ रहते हैं?
रहते वही हैं, एक व्यक्ति के 2 रूप हो सकते हैं। जैसे हम लोगों के भी 2 रूप हैं, मंदिर में आते हैं तो हम भक्त बन जाते हैं, घर पे जाते हैं तो राक्षस बन जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति एक ही है ब्रह्मा जी, उनके दो फीचर्स कहे जाते हैं। जैसे परम सत्य एक है, अपने आप को तीन रूपों में प्रकट करते ब्रह्म परमात्मा भगवान, लेकिन तीनों एक हैं, इसीलिए भगवान भी ब्रह्मा जी भी दो रूपों में प्रकट करते हैं, है वही ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा। और कोई प्रश्न?
ब्रह्मा जी भी अगर मोहित हो सकते हैं तो हम कैसे बचेंगे?
ये हमने बताया, ब्रह्मा जी मोहित होते हैं, जो आचार्य रूप है उनका वो मोहित नहीं होता है, इसीलिए उनकी शिक्षाओं का पालन कर कर हम बच सकते हैं। दूसरी चीज, हाँ ब्रह्मा जी भी मोहित हुए तो हम कैसे बचेंगे? ब्रह्मा जी भगवान की योजना से मोहित हुए, भगवान के योग माया से मोहित हुए, तो अगर हम भी भगवान की योजना से मोहित हो जाए, जीवन की सफलता है वो। कि अगर भगवान आकर हमें मोहित कर रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो भगवान ब्रह्मा जी कोई साधारण माया से मोहित नहीं हुए, ब्रह्मा जी भगवान की योग माया से, भगवान की योजना से मोहित हुए। और एक बात ये सही है कि ब्रह्मा जी अगर मोहित हुए तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा सावधान रहना चाहिए कि ब्रह्मा जी भी मोह में आ सकते हैं तो हमारी कोई शक्ति नहीं है, या हिंदी में हमारी क्या औकात है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? गंभीरता से आचार्यों की, श्रील प्रभुपाद की, भक्तों की शरण लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं तो मैं तो निश्चित हो जाऊंगा, मेरी रक्षा कीजिए। अहंकार तोड़ना चाहिए।
जैसे कि आपने बताया कि हर एक भगवान की इच्छा से हर कार्य होता है, तो क्या जो भक्त हैं उनकी जो भी डिजायर्स होते हैं वो भी भगवान ही करते हैं?
भक्त अगर पूर्ण रूप से भक्त जो होते हैं, अगर पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं भगवान ही क्रिएट करते बनाते हैं और भगवान ही पूरा करते हैं, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद इसको समझाते हैं तात्पर्य में, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो अगर शुद्ध भक्त हैं तो उनकी इच्छा, और जब तक वो शुद्ध नहीं है तो उनकी इच्छाओं में भौतिक दूषण होता है, तो वो सारी इच्छाएं भगवान क्रिएट नहीं करते, वो हम अपने कर्मों से, अपनी इच्छाओं से उसको क्रिएट करते हैं। तो जो भी इच्छाएं आती हैं अपने कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, काल के प्रभाव से हम लोग उसको बनाते हैं। तो इसीलिए जो भक्तों की इच्छा है निश्चित, तो ये जो इस समय हम लोग देखते हैं समाज में नेगेटिव जो हो रहा है, तो वो क्यों होता है? क्या वो भी कृष्ण से आता है? एक दृष्टि से सब कुछ कृष्ण से आता है, लेकिन अधर्म को कृष्ण की छाया माना गया है, जहाँ कृष्ण नहीं है। जैसे समझाया गया, कृष्ण सूर्य समा माया र अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नाही माया र अधिकार। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं हो सकती, माया है मतलब कृष्ण नहीं है। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो नेगेटिव सब होता है समाज में आता है, तो ये कृष्ण भावनामृत की कमी के कारण है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, जिससे नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाएं। और नेगेटिव तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारे हमारे कर्मों के प्रभाव हैं, प्रकृति उसके अनुसार हमें दंड इत्यादि देती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ जी।
जैसे अगर बोलो दिल्ली है, भारत वैकुंठ है, जिस प्रकार हम भारत में कहीं से भी दिल्ली जा सकते हैं, तो क्या इसी प्रकार वैकुंठ से भी गोलोक जा सकते हैं?
हाँ, प्रश्न ये, क्या वैकुंठ से कोई गोलोक जा सकता है कि नहीं? निश्चित जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं है। इसका कारण क्या है? हम लोग अपना गांव छोड़कर दिल्ली क्यों जाते हैं? क्या कारण है? गांव के लोग दिल्ली क्यों जाते हैं? नौकरी करने के लिए, मतलब संतुष्ट नहीं है गांव में, है ना, जो मिल रहा है, जो खेती से वगैरह, संतुष्ट नहीं है, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए दिल्ली जाते हैं। लेकिन वैकुंठ में जो भी जहां भी है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, तो उसको इच्छा ही नहीं होती कि मैं गोलोक जाऊं। पहली चीज, क्यों इच्छा करेगा वो गोलोक जाने के लिए? जो उसका मूल स्वभाव है, मूल स्थिति है, वो अपनी स्थिति में आ गया, तो वो फिर उसमें प्रसन्न है। तो जो व्यक्ति प्रसन्न है वो कभी नहीं जाते। और दूसरी चीज, वैकुंठ और गोलोक में भाव का भी अंतर है। ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव। तो इसीलिए जो भक्त ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, जिनको ऐश्वर्य भाव में सारा आनंद आता है, तो वो सब वैकुंठ में ही रहते हैं, क्योंकि वो उसी भाव के उसी रस के भक्त हैं। और जो कृष्ण के भक्त हैं वो गोलोक जाते हैं। तो इसीलिए जो वैकुंठ जाते हैं वो भगवान के अलग अलग रूपों के भक्त होते हैं और वहाँ भगवान की सेवा में पूर्ण संतुष्ट होते हैं, इसीलिए इच्छा नहीं करते गोलोक जाने की। ठीक है, आगे प्रश्न कोई?
क्या ब्रह्मा जी की तरह भी माँ गायत्री का निश्चित आयु गायत्री मंत्र करने के अधिकारी कौन होते हैं?
क्या ब्रह्मा जी की तरह भी गायत्री माता जो है उनका निश्चित आयु है और गायत्री मंत्र करने के अधिकारी कौन होते हैं? हाँ जी, इस जगत में जितने भी देवी देवता हैं उनकी आयु निश्चित है, फिर वो चाहे सरस्वती हों, गायत्री हों, जो भी हों। क्योंकि ये क्यों निश्चित है? क्योंकि इस ब्रह्मांड की आयु निश्चित है। तो ब्रह्मांड ही समाप्त होने वाला है, तो उसमें रहने वाले देवता कैसे शाश्वत हो सकते हैं? तो इस दृष्टि से वे भी, उनकी भी आयु है। और ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र के अधिकारी कौन है, कौन गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं? तो गायत्री मंत्र का जाप वो लोग कर सकते हैं जिनको एक प्रमाणिक गुरु से गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। ये आजकल जगत में लोगों ने गायत्री मंत्र को ये कह दिया है कि कोई भी कर सकता है, लोगों ने अपनी कॉलर ट्यून बना ली है, किसी को फोन करो तो गायत्री मंत्र चालू हो जाता है। ये सही नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र ये केवल गुरु के द्वारा जब प्रदान किया जाता है, इसीलिए जब मंत्र दिया जाता है तो कान में कहा जाता है ताकि दूसरा कोई नहीं सुने। जब भी करते हैं तो जोर से नहीं करते हैं, इतना भी नहीं जोर से, होंठ भी नहीं हिलाए जाते गायत्री मंत्र जप करते समय, ताकि किसी को सुनाई नहीं दे, अयोग्य व्यक्ति गायत्री मंत्र को ना सुन ले। तो योग्यता क्या है? गुरु के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। अगर गुरु के द्वारा प्रदान नहीं किया गायत्री, तो मिल जाएगा आपको, बुक्स ले लीजिए, उठा लीजिए। और लोग आजकल जिसको चाहे उसको गायत्री मंत्र देते हैं, बोलते हैं बहुत शक्तिशाली है इसका, पर आप लोग पालन कीजिए। लेकिन शास्त्र के अनुसार, पंचरात्र विधि के अनुसार, केवल एक प्रमाणिक गुरु के द्वारा जब इस मंत्र को दिया जाता है, तब इस मंत्र की सही शक्ति प्रकट होती है। गाने वाले तो बहुत कोई गा सकते हैं, और गायत्री एक प्रकार की नहीं है, केवल एक गायत्री बाहर गाया जाता है, या जो कह रहे हैं उनको लगता है एक ही गायत्री है। गायत्री का अर्थ है, ये एक छंद का नाम है, मंत्रों के उच्चारण करने के एक तरीके को गायत्री कहते हैं, या उनमें जो कुछ शब्द विशेष करके आते हैं उससे वो गायत्री बनते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही गायत्री है, हम लोग अपनी संस्था में 7 प्रकार के गायत्री का उच्चारण करते हैं रोज, जिनको गायत्री मंत्र प्राप्त है। तो ये गायत्री मंत्र ये केवल उन लोगों को जप करना चाहिए जिनको गुरु से मिला है। केवल बस ऐसे ही उठाए और गाना शुरू कर दिया और सोचा हमें बड़ा लाभ हो रहा है, तो कोई लाभ नहीं। उसका सच्चा लाभ तभी है जब गुरु से उसको प्राप्त किया जाए। हाँ जी,
रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्रद्धा से भाव तक पहुंचना है, तो भाव तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? क्या कथा सुन के जब रो पड़ते हैं तो क्या ये भाव कहलाता है?
श्रद्धा से भाव तक पहुंचना है तो भाव तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? क्या जब कथा सुनते हुए आंखों में आंसू आते हैं तो क्या ये भाव है? ये भाव की एक छोटा सा आभास हो सकता है, ये भाव नहीं है। क्योंकि भाव तक पहुंचने के लिए हमें कई सीढ़ियों को पार करना होता है, और ज्यादातर भक्त इस समय पर अनर्थ निवृत्ति की सीढ़ी को पार नहीं कर पाए हैं। निश्चित कुछ ऐसे भक्त भी होंगे जो कर चुके हैं, होंगे नहीं, हैं जो कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर भक्त ये केवल साधु संग और भजन क्रिया तक में रह जाते हैं, क्योंकि भजन क्रिया को अच्छे से नहीं करते, इसलिए अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाता कि केवल आंखों में आंसू आने से भाव स्तर पर व्यक्ति पहुंच गया है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए अगर हमारी आंखों में आंसू आते हैं भागवत सुनते हुए, कथा सुनते हुए, तो हमें ये सोचना चाहिए अंदर जाकर पहली चीज कि क्या मेरी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, मुझे भक्तों पर पूरा विश्वास है, मुझे भक्ति के मार्ग पर पूरा विश्वास है और उस पर चलकर मेरे हृदय में एक भी अनर्थ नहीं है। और एक भी अनर्थ नहीं है, मुझे पूरी निष्ठा, पूरी रुचि, मेरी रुचि केवल कृष्ण में है, आसक्ति केवल कृष्ण में है, तब हमें भाव का स्तर सोचना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप में से किसी का? ठीक है, बहुत समय हो गया। हाँ,
गायत्री मंत्र वालों की पूरी संस्था बनी हुई है, वह मंत्र देते हैं, सब लोग अनुसरण कर रहे हैं।
या हम दूसरी संस्थाओं के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम तो जो शास्त्र प्रमाणित है उस चीज को कह सकते हैं, बाकी अन्य लोग ना करें या करें या ना करें उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।